नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी की क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
मैं डॉक्टर राज राजीव, भूगोल शिक्षक चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर। आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण एवं वितरण। बच्चों, मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन तथा मानव जीवन का मूल आधार है। कृषि फसलों का संपूर्ण उत्पादन मिट्टी पर ही निर्भर करता है। यही नहीं, मिट्टी से ही मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास की आपूर्ति होती है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकृति का एक बहुमूल्य वरदान माना जाता है। आगे हम लोग जानेंगे भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण एवं वितरण। संरचना एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण को मूल रूप से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पर्वतीय मिट्टियाँ, दूसरी है मैदानी भागों की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ और तीसरा है दक्षिण पठार की मिट्टियाँ एवं चौथी अन्य है। पहला पर्वतीय मिट्टियाँ, इसमें तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहली है पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय के दक्षिणी तेज ढालों पर एवं निचली तली में अधिक पाई जाती है, जिसे नदियों ने लाकर एकत्रित कर दिया है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, इसमें कंकड़ पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। इस मिट्टी में वनस्पति चूना और लोहे का अंश बहुत कम मिलता है, अतः इसमें पैदावार नहीं के बराबर होती है। इसके विपरीत घाटियों में, जहां जिसे दून, द्वार और कांगड़ा कहा जाता है, तथा असम और दार्जिलिंग में जहां चिकनी और बारीक कण वाली मिट्टियां पाई जाती हैं, वहां चाय, आलू, मक्का, फल, मिर्ची आदि की खेती होती है। दूसरा है चूना और डोलोमाइट शैलों से प्राप्त मिट्टी। यह मिट्टी नैनीताल, मसूरी, चकरोता आदि स्थानों के निकट विशेष रूप से मिलती है। वर्षा के फलस्वरूप चूने की अधिकांश भाग बह जाता है, जिससे भूमि अनुत्पादक और बीहड़ों वाली हो जाती है। और तीसरा है ज्वालामुखी के उद्भेदन से प्राप्त मिट्टी। हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण मिट्टी में लावा, अन्य आग्नेय शैलों का चूर्ण अधिकांशतः पाया जाता है। पहाड़ी ढालों पर घाटियों में इन मिट्टियों में कृषि की जाती है, क्योंकि यह चिकनी वो उपजाऊ मिट्टी होती है। बच्चों, दूसरा नंबर है मैदानी भागों की मिट्टियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियाँ, इसे कांप मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी उत्तर भारत में पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब से लेकर पूरब में गंगा के मुहाने तक तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैली है। सामान्यतः भारत में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय के दोनों ओर के तटीय मैदानों, नदियों की घाटियों तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों और डेल्टाओं में मिलती है। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है। उपजाऊपन के आधार पर इस मिट्टी को तीन उप विभागों में बांट सकते हैं। पहला पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, दूसरा है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, और तीसरा है नूतन जलोढ़। तो पुरातन जलोढ़ या बांगर मिट्टी, ये नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टियां हैं, जो नदियों के पार्श्ववर्ती भागों में उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण अब पहुंच नहीं पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इनमें धरातल ऊंचा होने तथा जल तल नीचा रहने के फलस्वरूप सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टियाँ। इस मिट्टी का वितरण नदियों के बाढ़ वाले मैदानों तक ही सीमित है। ये मिट्टियाँ अधिक महीन कणों वाली होती हैं। इनकी जल धारण क्षमता पुरातन जलोढ़ मिट्टियों की अपेक्षा अधिक होती है। नदियों के पेटे में होने से खादर मिट्टियों को सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा है नूतन जलोढ़ या डेल्टा की मिट्टियाँ। इस प्रकार की मिट्टियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। ये अधिकांशतः दलदली और तट के निकट नमकीन भी होती है। इनमें कण बहुत बारीक होते हैं। बच्चों, तीसरा है दक्कन पठार की मिट्टियाँ। रंग, रचना और उपजाऊपन के अनुसार इन मिट्टियों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है लावा की काली मिट्टी। यह गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्यवर्ती और पश्चिम मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तलवटी भाग, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों, राजस्थान के झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों तथा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, बांदा और झांसी जिले में मुख्य रूप से मिलती है। इसका रंग गहरा काला और इसके कणों की बनावट घनी होती है। सामान्यतः यह मिट्टी गहरी और अधिक काले रंग की तथा अधिक उपजाऊ होती है। इसमें गेहूं, कपास, गन्ना, ज्वार, तंबाकू, काजू, मूंगफली, रेंडी और बाजरा पैदा किए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशिया, एल्यूमिना तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव रहता है। बच्चों, दूसरी है लाल मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर धूर दक्षिण तक पाई जाती है। इसका क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड के संथाल परगना और छोटा नागपुर के पठार पर, पश्चिम बंगाल में वीरभूमि, बांकुंडा और मेदिनी जिलों में तथा मेघालय की खासी जयंतिया और गारो पहाड़ियों में, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा और झांसी जिलों में, राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में तथा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति का अंश बहुत कम होता है। बच्चों, तीसरा है लेटराइट मिट्टी। इसका कुछ क्षेत्रफल लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस मिट्टी का क्षेत्र विशेषकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रीवा, पन्ना जिले में और पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समीप, वहीं कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, राजमहल की पहाड़ियों, उड़ीसा तथा असम के कुछ भागों में पाया जाता है। शैलों का ठोसपन और बुलबुलीदार रचना इस मिट्टी की विशेषता है। इस मिट्टी का रंग मुख्य रूप से लाल होता है। और जो मुख्य चौथी मिट्टी है वो अन्य मिट्टियाँ। यह मिट्टी 2 प्रकार में बटी हुई है। पहला है मरुस्थली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये मिट्टियाँ प्रधानतः बलुही है, जिनके कण मोटे होते हैं। ये मिट्टियाँ स्थानीय रूप से मरुस्थलीय भाग से एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा कच्छ के रनों से उड़ाकर यहाँ एकत्रित की हुई हैं। सिंचाई के द्वारा ही इनमें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, रसदार फल, सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। और दूसरा है नमकीन एवं क्षारीय मिट्टियां। शुष्क और अर्ध शुष्क भागों तथा दलदली क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे थूर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, रेगर मिट्टी, रेह मिट्टी, तरेल मिट्टी और चोपन मिट्टी। शुष्क भागों में निरंतर नमक व क्षार एकत्रित होने से भी इसका निर्माण पश्चिमी राजस्थान के अंतःप्रवाही क्षेत्रों में हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।